आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
ब्योमकेश बख्शी की कहानी, वसीयत का जंजाल, भाग 5। कहानी में अभी तक आपने सुना कि कराली बाबू की हत्या के सिलसिले में ब्योमकेश उनके नातेदारों से पूछताछ शुरू करता है जो उसी घर में रहते हैं जिसमें हत्या हुई। शख की सुई सुकुमार बाबू और उनकी बहन सत्यवती की ओर घूमती है। ब्योमकेश अपने घर में अजित बाबू से बात कर ही रहे होते हैं कि कोई दरवाजा खटखटाता है। सामने सत्यवती खड़ी थी। अब आगे सत्यवती ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर वो खड़ी रही, फिर एकाएक आंसुओं से रोने लगी और ऊंधी आवाज उठी।
ब्योमकेश बाबू, मेहरबानी कीजिए, कृपा करके मेरे भाई को बचा लीजिए।
मैं उसके अचानक आगमन से सकते में आ गया, लेकिन ब्योमकेश उठकर उसकी ओर बढ़ा। शायद सिर चकराने की वजह से उसने अपने हाथों को अंधे की तरह आगे किया। ब्योमकेश ने तेजी से उसके हाथों को पकड़ा और उसे कुर्सी तक ले आया। उसके इशारे पर मैंने पंखा चला दिया। पहले कुछ मिनट वो साड़ी से मुंह दाबे आंसू बहाती रही। हमने भी उसे शांति से संभलने का समय दे दिया। हमारे इस उठा पटक के जीवन में भी ऐसी पहली घटना थी। मैंने सत्यवती को एक ही बार देखा था। उस समय वो एक आम शिक्षित बंगाली लड़की से अलग कतई नहीं लगी थी। ऐसी स्थिति में इस संकट की घड़ी में अपने सारे संकोचों को छोड़कर उसका सीधा हमारे पास आना न केवल कल्पना से परे था, बल्कि एक असाधारण घटना थी। संकट की घड़ी में अधिकांश बंगाली लड़कियां काठ की गुड़िया बन जाती हैं, लेकिन इस दुबली पतली सांवली लड़की ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। उसके पैरों की धूल से सुनहरी चप्पलों से लेकर उसके उलझे बालों के नीचे गुथी चोटियों तक उसके संपूर्ण शरीर में एक आभा झलक रही थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और सिर उठाकर दोहराया,
ब्योमकेश बाबू, दया करके मेरे भाई को बचा लीजिए।
मैंने देखा, हालांकि उसने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया था, फिर भी उसका स्वर कांप रहा था। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सत्यवती ने बात काटकर व्याकुलता में कहा,
वो बेकसूर है, वो कुछ नहीं जानता, उसने कोई अपराध नहीं किया।
ये कहकर वो फिर रोने लगी। मैं देख रहा था, ब्योमकेश भीतर ही भीतर काफी प्रभावित हुआ है, पर बाहर से शांत दिख रहा था। वो बोला, लेकिन सबूत जितने भी मिले हैं वो उसी के विरुद्ध हैं। सत्यवती बोली,
वे सब झूठे हैं, दादा धन के लिए किसी की हत्या कर ही नहीं सकते, शायद आप नहीं जानते वो कैसे व्यक्ति हैं। ब्योमकेश बाबू, हम दोनों काका की संपत्ति नहीं चाहते, हमें संकट से बचा लीजिए, हम जीवन भर आपके एहसान के तले जाएंगे।
उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अब गालों के नीचे बहने लगी थी। उसने इन आंसुओं को पोंछने का प्रयास नहीं किया, संभव है उसे इसका भान भी ना हुआ हो। इस बार जब ब्योमकेश बोला तो पहली बार मुझे उसकी आवाज में संवेदना की झलक दिखाई दी। उसने कहा, यदि आपका भाई वास्तव में बेकसूर है तो मैं उसे बचाने की भरसक चेष्टा करूंगा, लेकिन
वो बेकसूर है, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए हैं? मैं अपने सम्मान की कसम खा सकती हूं, दादा ये सब नहीं कर सकते, वो एक मक्खी तक नहीं मार सकते।
एकाएक उसने नीचे झुककर ब्योमकेश के पैर पकड़ लिए। ब्योमकेश तेजी से उठकर एक और हो गया।
अरे ये आप क्या कर रही हैं? मेहरबानी करके ऐसा ना कीजिए।
वादा कीजिए, पहले आप वादा कीजिए कि आप दादा को छुड़वाएंगे।
ब्योमकेश ने सख्ती से उसे पकड़ा। ब्योमकेश ने उसे सख्ती से पकड़ा और कुर्सी पर बिठा दिया। इसके बाद उसने सामने बैठकर साफ रूप से कहना शुरू किया, आप एक बात पर बिल्कुल गलत हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो सुकुमार को छोड़ सकूं, ये केवल पुलिस कर सकती है। मैं ये साबित कर सकता हूं कि वो बेकसूर है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे सारे तथ्यों का पता चले। क्या आप अब तक ये भी नहीं समझ पाई हैं कि जब तक आप मुझसे सब बातें छिपाती रहेंगी तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सत्यवती ने आंखें नीचे करके कहा,
मैंने आपसे कोई बात नहीं छिपाई है।
हाँ, आपने छिपाई है। उस रात आप कराली बाबू के कमरे में गई थी और आपको उनकी मौत का पता लग गया था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। सत्यवती भयभीत आंखों से ब्योमकेश को देखती रही। उसके बाद उसने सिर नीचा कर लिया और चुप बैठी रही। ब्योमकेश ने अब आहिस्ता से पूछा, अब क्या आप सब कुछ बताएंगी? सत्यवती ने आंख उठाकर कहा।
कैसे कहूं, वो सब कुछ तो दादा के खिलाफ हो जाएगा,
ब्योमकेश ने आग्रह भरे स्वर में कहा। बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपका भाई बेकसूर है तो सच्चाई उनका कुछ भी बिगाड़ने नहीं देगी। आप निर्भय होकर मुझे सब कुछ बता सकती हैं।
सत्यवती कुछ देर सिर नीचा किए बैठी सोचती रही, फिर टूटती आवाज में बोली,
ठीक है, मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं।
उसने आंसू भरे नेत्रों को पोछा और अपने को नियंत्रित करके कहना शुरू किया।
उस शाम दादा की काका से कहा सुनी हुई थी। इससे पहले काका ने अपनी वसीयत में दादा के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। इसको लेकर दोपहर में उनका मोतीदा से काफी झगड़ा भी हुआ था। कॉलेज से लौटने के बाद जब दादा को ये पता लगा तो वो काका के पास गए और जाकर बोले कि वो संपत्ति केवल उनके नाम न करके उसका सब में बंटवारा कर दे। काका को इस तर्क से नफरत थी। जब उन्होंने दादा की दलील सुनी तो वो क्रोधित होकर बोले, तुम क्या मेरे से ज्यादा जानते हो, क्या समझते हो, निकल जाओ यहां से, तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। दादा को ये उम्मीद नहीं थी कि काका इतने नाराज हो जाएंगे। उनके कमरे से निकलकर दादा फणीदा के पास गए। फणीदा अपंग है, वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए दादा शाम का समय उनके साथ ही बिताते हैं। फणीदा से आप भी शायद मिल चुके होंगे, वो कभी स्कूल तो गए ही नहीं किंतु काफी पढ़े लिखे हैं। उनके बुकशेल्फ को देखकर आपको अनुमान हो जाएगा कि उन्हें कितने विषयों का ज्ञान है। मैं कभी कभी अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए उनके पास भी जाती हूँ। बहरहाल उस शाम दादा बहुत निराश हो गए थे और करीब 8 बजे मुझसे बोले, सत्या मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, आधी रात तक वापस लौटूंगा, मेरे लिए दरवाजा खुला ही रखना। उन्होंने जल्दी खाना खाया और चुपचाप निकल गए। हमारा खानसामा रात का खाना समाप्त हो जाने पर सामने के घर में अपने गांव के दोस्तों के साथ काफी देर तक बैठा रहता है। ये मैं जानती थी, इसलिए दादा के आने तक मैंने इंतजार नहीं किया। 10 बजे तक मैंने खाने की मेज को साफ किया और ऊपर अपने कमरे में सोने चली गई। मैं अभी सोई ही थी कि कुछ आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा जैसे दादा के कमरे से कुछ आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज मेज या बड़ा बक्सा फर्श पर खींचा जा रहा हो। ये सोचकर कि दादा शायद सिनेमा देखकर लौटे हैं, मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों नींद ही नहीं आई। कुछ देर आंखें खोले लेटी रही, दादा के कमरे से और आवाज ही नहीं आई। मैंने सोचा दादा अब सो गए होंगे। घंटा भर भी बीता ना होगा कि गलियार से मुझे फिर आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता से चल रहा हो। मुझे आश्चर्य हुआ, दादा कब के सो गए थे, तो फिर कौन हो सकता है। मैं धीरे से उठी और दरवाजे की फांक से देखा, दादा चुपचाप अपने कमरे में घुसे हैं और पीछे से उन्होंने दरवाजा बंद किया। गलियारे में चूंकि चांदनी छिटकी हुई थी इसलिए मैंने साफ रूप से दादा को देखा था।
ब्योमकेश ने टोका, केवल एक स्पष्टीकरण, क्या सुकुमार बाबू जूते पहने हुए थे।
हाँ।
क्या उनके हाथ में कुछ था।
नहीं।
कुछ नहीं, कोई कागज या बोतल।
कुछ नहीं।
क्या समय होगा, क्या आपने देखा था,
सत्यवती ने कहा।
इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी घड़ियों में 12 बजे के घंटे बजने लगे थे।
ओह, सत्यवती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा।
पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है, दादा 15 मिनट पहले आ गए थे। ये मुझे उनके कमरे से आई आवाज से पता लगा, तो फिर अब वो कहां गए थे। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कहीं काका की तबीयत तो खराब नहीं हो गई और दादा उन्हें देखने गए हों। काका को कभी कभी रात में आर्थराइटिस का दर्द होने लगता था और वो सो नहीं पाते थे, ऐसे मौके पर उन्हें सुलाने के लिए दवा देनी पड़ती थी। मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर काका के कमरे की ओर जाने लगी। वे हमेशा दरवाजा खुला ही रखते थे। मैं कमरे में घुसी, वहां अंधेरा था पर वहां एक अजीब सी महक थी। मैं नहीं कह सकती वो कैसी थी, तेज तो नहीं थी पर थी चारों ओर।
क्या वो मीठी महक थी।
हाँ, जैसे सिरप की होती है।
हाँ वही तो, क्लोरोफार्म। अच्छा फिर।
लाइट का स्विच दरवाजे के ही पास था, मैंने लाइट जला दी और देखा कि काका पलंग पर लेटे हैं। मुझे लगा सो रहे हैं। उनके शरीर को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि उनकी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। उस महक ने मेरी सांसों में घुटन जैसी पैदा कर दी थी। जैसे किसी ने मेरी नाक पर गीली पट्टी लगा दी हो। कुछ देर मैं दरवाजे के पास खड़ी रही, अपने को समझाने की कोशिश करती रही, ये महक दवा की है जिसे लेकर काका अभी अभी सो गए हैं। मेरे पांव कांप रहे थे, पर मैं बहुत सावधानी से काका के पलंग के पास गई। मैंने आगे झुककर देखा कि वो सांस नहीं ले रहे। मैं कह नहीं सकती मेरे अंदर क्या हो रहा था। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, मेरा सिर चकराने लगा था। अपने को संभालने के लिए मैंने आगे बढ़कर काका के तकिए को छुआ। मेरा हाथ उनके गले पर गिरा, मेरे हाथ में कांटे जैसी चुभन हुई। मैंने देखा कि उनके गले में एक सुई घुसी हुई है, सुई में धागा भी लगा है। मैं वहां और अधिक देर नहीं रुक पाई। मुझे नहीं मालूम कैसे मुझमें लाइट बुझाने और वापस अपने कमरे में आने की ताकत आई। जब तक मुझे होश आया तब तक मैंने अपने को पलंग पर बैठा पाया। मैं थर थर कांप कर रो रही थी। शेष बातें तो आप जानते ही हैं। मुझे दादा पर शक नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि वो ये नहीं कर सकते। फिर भी मुझे सोचने में अधिक समय नहीं लगा कि ये सब मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि बताने से दादा की स्थिति और भी खराब हो सकती है। दूसरे दिन सुबह मैंने किसी प्रकार चाय बनाई और काका के कमरे में ले गई।
ये कहते हुए सत्यवती की आवाज मध्यम पड़कर लड़खड़ाने लगी। उसका अस्वाभाविक पीला मुंह और दहशत से त्रस्त आंखें साफ गवाही दे रही थीं कि बीती रात उसने कितनी उलझनों और यातना में गुजारी है। मैंने ब्योमकेश के मुंह को देखा, उसकी आंखों में चमक दिखाई थी। वो बोला, मैंने आज तक आप जैसी असाधारण लड़की नहीं देखी। कोई और होती तो वो चिल्लाती, शोर मचाती और बेहोश होकर उसने दुनिया को सिर पर उठा लिया होता, लेकिन आप केवल दादा के लिए। ब्योमकेश ने खड़े होकर कहा, अब आप घर जाइए, कल सुबह वहां आऊंगा। सत्यवती उठी और घबरा कर बोली,
लेकिन आपने कुछ बताया नहीं।
ब्योमकेश बोला, बताने को क्या है, मैं आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं दे सकता जो बाद में आपको निराशा दे। इस पूरे कांड में विधु बाबू नामक महाज्ञानी शामिल हैं, ये नहीं जानती क्या आप। बहरहाल ये तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि अगर आपने मुझे पहले ही दिन सब कुछ बता दिया होता तो केस पूरा अब तक आसानी से सुलझ गया होता। सत्यवती ने आंखों में आंसू लेकर पूछा,
जो कुछ मैंने कहा है क्या वो दादा को नुकसान पहुंचाएगा? आपको विश्वास है? ब्योमकेश बाबू मेरा अपना कोई नहीं है।
ये कहते हुए उसका गला भर आया। ब्योमकेश ने तेजी से उठकर उसके लिए दरवाजा खोला और मुस्कुरा कर बोला, अब आप जल्दी कीजिए, देर हो रही है और फिर ये कुमारों का घर है। सत्यवती उठी और दुखी मन से जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची ब्योमकेश ने दबी जबान से कुछ कहा जो मैं सुन नहीं पाया। सत्यवती ने चौंक कर ब्योमकेश को देखा, उसकी आंखों में मुझे आंसू भरे आभार की झलक दिखाई दी। हाथ उठाकर उसने अभिवादन किया और सीढ़ियां उतर गई। कहानी में आगे क्या होता है ये सुनिए अगले भाग में।